Namaskar and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Sunday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. Well, you may call us on the numbers 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is Subodh Mishra.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444-2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपकी आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
पहले हेडलाइन के साथ लालिमा।
थैंक यू सुबोध। यस, हेडलाइंस। फॉरेन इन्वेस्टर्स पंप इन नियरली 12,000 करोड़ रूपीज दिस वीक। ग्लोबल गोल्ड प्राइसेज रजिस्टर देयर फर्स्ट वीकली गेन। And CBIC starts awareness campaign to counter rising financial frauds.
इस हफ्ते विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 12,000 करोड़ रुपए डाले। सोने के वैश्विक मूल्य में चार हफ्ते में पहली बार बढ़त और CBIC ने बढ़ती हुई वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। 14 जून को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार पर फिर से भरोसा दिखाते हुए लगभग 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 3 से 7 जून वाले सप्ताह में एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से 14,794 करोड़ रुपए निकाले थे, लेकिन पिछले सप्ताह यह रुख बदल गया। जून में अब तक के आंकड़ों का हिसाब देखें तो विदेशी निवेशक भारतीय पूंजी बाजार से 3,064 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। बहरहाल, उन्होंने इस महीने अब तक भारतीय ऋण बाजार में 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इससे पहले अप्रैल में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 25,586 करोड़ रुपए और ऋण बाजार से 8,700 करोड़ रुपए निकाले थे। उससे पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो विदेशी निवेशकों ने मार्च में भारतीय पूंजी बाजार से 35,098 करोड़ रुपए और फरवरी में 1,539 करोड़ रुपए भारतीय पूंजी बाजार में इतने का निवेश किया था, 1,539 करोड़ रुपए का, जबकि जनवरी में उन्होंने 25,743 करोड़ रुपए निकाले थे। विदेशी निवेशक 2024 में अब तक भारतीय शेयर बाजार से कुल 26,428 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय ऋण बाजार में 59,373 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो ये आंकड़े अभी थोड़े स्नेहा दिख रहे हैं कि इस हफ्ते से पॉजिटिव हो रहे हैं, जो पिछले कुछ समय से नेगेटिव ट्रेंड था। एक तो है कि नई सरकार को लेकर अनिश्चितता जो बनी थी कि भाई ठीक है क्या होगा, लेकिन जो हम कहते हैं स्टेटस को बना हुआ है तो बाजार को हमेशा निश्चितता पसंद आती है, बदलाव नहीं चाहिए होता है।
बिल्कुल।
तो शायद वो भरोसा का है।
तो ये भरोसा आजकल ऐसा होता है कि आता जाता ही रहता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है यहां पर वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग या फिर बाइंग से अब हमारी मार्केट पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना पहले पड़ता था, और ये बहुत ही
बहुत अहम है,
अहम है, मतलब इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में ये काफी महत्वपूर्ण
बात है
कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, मतलब उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, जैसे हम एसआईपी
के आंकड़े बहुत अच्छे आते हैं।
तो ये वाली बढ़ोतरी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की आए जाए, हमें पता जरूर रखना चाहिए कि हो क्या रहा है, बट अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करते रहनी चाहिए।
ये कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली से मेहर हमारे साथ है। मेहर, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
हाँ जी, हाय मार्केट मंत्रा टीम।
जी, हाय।
मेरे पास दो फंड्स हैं, मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप, इसमें भी मेरा एसआईपी है, और एक क्वांट का है एक्टिव फंड, उसमें भी मेरा एसआईपी है। बट अभी मीरा एसेट का जैसे मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा होराइजन लॉन्ग टर्म है, अराउंड 7 से 10 साल।
जी मिहिर जी, जो आप फंड स्पेसिफिक मेंशन कर रहे हैं, मीरा एसेट का लार्ज एंड मिड, क्योंकि ये आपके लंबे समय का पैसा है, इसमें अपफ्रंट मैं आपको कहना चाहूंगी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इसमें जारी रखिएगा, क्योंकि ये फंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी नियर टर्म परफॉर्मेंस थोड़ी सी इम्पैक्टेड है, बट आपने देखा होगा क्योंकि आप इसमें बने रहे हैं काफी समय से, इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा हैंडसमली रिवॉर्ड करा है उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए जो ये आज भी कर रहा है। तो आई वुड से कि क्योंकि इसका पोर्टफोलियो और इसकी जो फंड मैनेजमेंट टीम है वो अभी भी एकदम इंटैक्ट है, वो अपने कन्विक्शंस पे बनी हुई है कि जो उन्होंने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं वो उन्होंने अभी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करवाएगा जो अभी मार्केट की रैली हो रही है, बट इट इज नॉट टू से दैट दे आर नॉट गुड स्टॉक्स इन देम सेल्स। तो आई वुड से कि आप इनमें बने रहिए, स्पेसिफिकली क्योंकि आपका लंबे समय का पैसा है, थोड़ा टाइम और थोड़े पेशेंस के साथ यह आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड देगा।
All right, we are now joined by Yogesh from Delhi again. Yes, Yogesh, please ask a question.
Thank you so much. नमस्कार अश्विनी को, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम एनएससी में देखते हैं, एनएससी में करीब 2200 कंपनियां लिस्टेड है और बीएससी में करीब 5000 कंपनियां लिस्टेड है, तो जो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स जब पिक करते हैं तो क्या उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसे एनएससी से उठा सकते हैं, या सिर्फ जो बीएससी में लिस्टेड है बट एनएससी में नहीं है छोटी कंपनियां उनको भी पिक कर सकते हैं? नंबर एक। मेरा एक दूसरा सवाल है कि मूलतः वैल्यू इन्वेस्टिंग में और जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है, कोर उसमें क्या डिफरेंस होता है?
जी, तो आपका दूसरा सवाल मैं पहले लेती हूँ। वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल फैक्टर्स वाइज ये डिफरेंस हो जाता है कि जो कंपनी ऑलरेडी स्टेबल और ग्रोइंग तरीके से बढ़ोतरी देख चुकी होती हैं, उनका जो पी रेशियो होता है, जो उनकी वैल्यूएशन बताता है कि कितनी हाई या लो है, वो ऑलरेडी हाई पर रहते हैं, तो ये बेसिकली जो एक इनकी ग्रोथ होती है वो स्टेबल तरीके से देखी जा चुकी होती है और आगे भी एक्सपेक्टेड होता है कि वो स्टेबिलिटी ही रहेगी, तो ये हो जाते हैं हमारे ग्रोथ स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक्स वो हो जाते हैं जो अभी के टाइम पर आउट ऑफ फेवर हैं, और ये कैसे पता चलता है कि उनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो थोड़ा कम होता है, और जबकि उनके फंडामेंटल फैक्टर्स बता रहे होते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे इनकी बढ़ोतरी हो सकती है, तो आज के टाइम पे वो अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे, वो आउट ऑफ फेवर हैं, बट थोड़े समय देकर उनमें परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। तो ये वैल्यू अप्रोच और ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच का फर्क हो गया। जो आपका पहला सवाल है एनएससी और बीएससी, मतलब कि फंड मैनेजर्स कहां से पिक कर सकते हैं, तो जहां तक मेरी समझ है ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जहां पे उनको मिल रहा होता है वो वाला स्टॉक जो अकॉर्डिंग टू यू नो द प्राइसेस एंड द क्वांटिटीज दे आर वांटिंग टू बाय इट फॉर, वो वहां से किया जा सकता है।
जी, अगले कॉलर हैं जयपुर से जितेंद्र। जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हाँ, धन्यवाद। पहले तो मैडम काफी दिन बाद आई हैं आप, धन्यवाद आपको। और मेरा प्रश्न है कि मोतीलाल ओसवाल का एक नया फंड शायद आया है, डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स फंड है, तो उसके बारे में, हालांकि वो सेक्टोरियल फंड है, उसके बारे में कुछ आप बताएं, और स्टेट एसबीआई का कोई 2-3 अच्छे फंड का नाम बताएं।
जी, तो आपने बिल्कुल सही बोला, मोतीलाल का अभी एक पैसिवली मैनेज फंड आया है डिफेंस सेक्टर में, और ये अपने जैसा एक पहला पैसिवली मैनेज फंड है। एक और डिफेंस सेक्टर बेस्ड जो फंड है वो एचडीएफसी का डिफेंस फंड है, बट वो एक्टिवली मैनेज्ड है, तो ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इन द सेक्टर दैट इट इज प्रोवाइडिंग एक्सपोजर टू। इसमें क्योंकि आपने देखा होगा ये जो मेक इन इंडिया वाला इनिशिएटिव गवर्नमेंट के थ्रू आया है, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एक सेगमेंट को पुश मिल रहा है, उसकी वजह से पीएसयूज वगैरह काफी स्पॉटलाइट में आए हैं, और इस सेक्टर में हम बेसिकली पीएसयूज जैसे स्टॉक्स ही मिल पाते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो इस इंडेक्स में कुछ 15 स्टॉक्स होते हैं और ये फंड इसमें जो ये 15 स्टॉक्स होते हैं उसमें जो 10 हैं वो 90% ऑफ दिस फंड को बनाते हैं। सो जनरली हम बोलते हैं कि सेक्टोरल फंड से आप दूर रह सकते हैं क्योंकि उनके एक्सपोजर्स आपको फ्लेक्सी में मिल पाते हैं, बट जिस तरीके का सेक्टर ये है उसमें शायद फ्लेक्सी कैप जैसे डाइवर्सिफाइड फंड्स में इनका एक्सपोजर होगा बट मिनिमल होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इनका आप सिग्निफिकेंट एक्सपोजर ले पाएं, प्लस हमें पता ही है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव काफी जोरों शोरों से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बढ़ावा दे रहा है, तो मतलब इफ यू वांट टू ऐड दिस सेक्टर आप कंसिडर कर सकते हैं। बट मैं बस ये कहना चाहूंगी कि एक स्मॉल एलोकेशन रखिएगा इस पर्टिकुलर फंड की अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में। जहां तक आपने बोला कि एसबीआई के कुछ मैं आपको अच्छे फंड बताऊं, तो मैं आपको यहां पे एक एसबीआई का ब्लू चिप फंड बता सकती हूं जो एक काफी अच्छा लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है। आपने मेंशन नहीं करा है कि आप किस पर्टिकुलर इक्विटी फंड के बारे में जानना चाहते हैं, बट एसबीआई क्योंकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टीम रखती है, काफी स्ट्रांग रिटर्न्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, बट अपनी पोर्टफोलियो क्वालिटी पे भी ये काफी फोकस्ड रखते हैं। तो कुछ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में मैं आपको बता सकती हूं, जैसे इनका एसबीआई लार्ज कैप जिसको ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है वो एक काफी अच्छा फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। आई होप ये वाले टाइप के फंड्स आप अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे।
ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइन बाय संजय कॉलिंग अस फ्रॉम मुंबई। यस संजय जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, इन दोनों फंड में मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, प्लीज इसमें जरा प्रकाश डालें, थैंक यू।
हाँ जी, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि फोकस्ड फंड्स जो होते हैं वो भी एक तरीके के फ्लेक्सी कैप फंड्स ही होते हैं, क्योंकि वो गो एनीवेयर फंड्स होते हैं, वो किसी भी बड़ी छोटी सबसे छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। रिस्ट्रिक्शन फोकस्ड फंड्स में वहां आ जाती है जहां पे उनके नंबर ऑफ स्टॉक्स पे लिमिट है कि वो कुछ 30 से ज्यादा स्टॉक्स रख ही नहीं सकते अपने पोर्टफोलियो में, तो इस वजह से जो फोकस्ड स्ट्रैटेजी हो जाती है वो थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है क्योंकि वो उन्हीं टाइप के स्टॉक्स में अपना कन्विक्शन बनाए हुए हैं। अगर मान लीजिए कुछ बड़ा पोर्शन ऑफ दो स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो फंड होएगा वो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लिमिट है 30 स्टॉक्स की। बट ये कहने के बाद मैं आपको ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी, जो स्टॉक जो फंड्स आपने मेंशन करे हैं एसबीआई फोकस्ड इन द फोकस्ड अमंग द फोकस्ड स्ट्रेटजीज, वो एक काफी अच्छा फंड है, उसकी परफॉर्मेंस भी काफी ठीक ठाक रही है, और स्पेसिफिकली क्योंकि आप बड़े समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई वुड से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक फ्लेक्सी कैप की बात है वो भी कोई बुरा फंड नहीं है, बट फोकस्ड कुछ चीजों में उससे बेहतर है, जैसे फोकस्ड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम है, बट मतलब अगर आपकी एसआईपीज के माध्यम से आप इनमें बने हुए हैं तो आप बिल्कुल इनमें बने रह सकते हैं। बस एम करिएगा कि आप एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करें और अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क पे बने रहें।
जी, अगले कॉलर हैं मुंबई से रत्नाकर। रत्नाकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हेलो, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
मेरे एक छोटे छोटे दो तीन सवाल है कि एक सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड है मेरे पास, वो 3 साल हो गए लेकिन उसका रिटर्न 3 साल में 36% है, और सुंदरम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसका भी उतना ग्रोथ नहीं दिखता है, एब्सोल्यूट रिटर्न 9% है, तो ये फंड से विड्रॉ करना चाहिए क्या, बाहर होना चाहिए, एक मेरा सवाल है। और जो मोतीलाल ओसवाल का जो फंड आ रहा है डिफेंस के बारे में वो कैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, और मेरा तीसरा सवाल है कि जो ईएलएस खत्म होता है 3 साल के बाद तो उसमें से विड्रॉ करना चाहिए क्या कि कंटिन्यू करना चाहिए।
मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस फंड के बारे में तो स्नेहा ने अभी अभी बताया है, बाकी दोनों सवाल पर स्नेहा।
जी बिल्कुल, तो जो फंड्स आपने मेंशन करे थे सुंदरम का बैलेंस एडवांटेज और सुंदरम का मल्टी एसेट एलोकेशन, तो पहले तो मैं बताना चाहूंगी सुंदरम का मल्टी एसेट एलोकेशन अभी हाल फिलहाल में ही आया हुआ फंड है, उसको अभी 4-5 महीने ही हुए हैं, तो आप बहुत ही कम समय दे रहे हैं उस फंड को आपको रिवॉर्ड करने के लिए, तो आई वुड से कि अगर ये फंड आपके यू नो गोल के अकॉर्डिंग सूटेबल है और इसीलिए आपने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा है, तो आप उसको थोड़ा सा समय दीजिए, तभी वो आपको कुछ रिवॉर्ड दे पाएगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। जो आपने दूसरा फंड बोला बैलेंस एडवांटेज फंड, वो काफी पुराना फंड है, और तो जो बैलेंस एडवांटेज टाइप के फंड्स होते हैं वो एक तरीके की डायनामिक एसेट एलोकेशन मेंटेन करते हैं कि वो आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसे कमोडिटीज में एक्सपोजर देते हैं अकॉर्डिंग टू यू नो उनका जो अपना एक मॉडल होता है या उनकी जो अपनी एक समझ होती है कि जब जो एसेट क्लास अच्छा करेगा उसमें वो ज्यादा करेंगे, जब जो नहीं करेगा, मतलब उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके हिसाब से उनकी एसेट एलोकेशन चेंज होता रहता है, और वो एम करते हैं कि उस चेंज के अकॉर्डिंग वो आपको मार्केट की वॉलिटिलिटी से भी थोड़ा सा बचाएं और साथ में आपको एक रिस्क रिवॉर्ड आउटकम्स ऐसा दे पाएं। जो कुछ फंड हाउसेज ऐसा करते हैं कि वो कुछ कंजर्वेटिव इक्विटी की तरीके से देते हैं। अब जहां तक सुंदरम बैलेंस एडवांटेज की बात है, अगर फिर से मैं वही बोलूंगी, अगर आप इसमें अपने लंबे समय का पैसा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये आपके गोल के लिए सूटेबल है तो आप इसमें बने रहिए, बट इतना जरूर जानना चाहिए कि इनके एसेट एलोकेशन जैसे मैंने बोला डायनेमिक होते हैं, इस वजह से इनके रिस्क रिवॉर्ड आउटकम थोड़े से नॉन प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। तो जहां पर अगर आप कुछ स्टैटिक एसेट एलोकेशन वाले फंड्स लेते हैं जैसे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, वहां पे आपको एक प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ पता होता है कि अच्छा ये फंड इतना रिस्क लेगा, वो 75% इक्विटी में रहते हैं और 25% के आसपास डेट में रहते हैं, तो एक स्टेबिलिटी का स्टैटिक एसेट एलोकेशन का फायदा आ जाता है। बट अगर आप इनमें बने हुए हैं आप बने रह सकते हैं। मैं एक और चीज ये बोलना चाहूंगी कि रिटर्न्स को हमें उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, स्पेशली अगर हमने अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन अभी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन अभी स्टार्ट करी हैं, क्योंकि मल्टी एसेट जैसे मैंने बोला कि अभी का ही है, तो ये थोड़ी सी चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि एसेट एलोकेशन आपका मेन रीजन होता है कि आप ये एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए आप ये वाला फंड चूज कर रहे हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए ज्यादा अच्छा है इसलिए आप ये वाला कर रहे हैं। तो जब तक वो फंड आपको आसानी से ये सब चीजें दे रहा है, आपको भी उसको थोड़ा समय देना होता है कि आपको वो रिवॉर्ड कर पाए।
जी, इन्होंने ईएलएसएस के बारे में पूछा था, कंटिन्यू करें या नहीं।
हाँ जी, तो जो आप कह रहे हैं कि ईएलएसएस को अगर टाइम हो जाता है, 3 साल वाला लॉक इन अगर पूरा हो जाता है तो निकाले या नहीं, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर निकाल के वो आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे और उसे खर्च कर देंगे, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई टेंडेंसी होगी आपकी, तो आप उसे ना निकालिए। बट अगर आप उसको यूज करके, मतलब जैसे कि अगर आपको उसकी काफी ज्यादा जरूरत है, आप उसे यूज करके कुछ अपना कोई गोल है जो अचीव कर सकते हैं, कहीं पे उसकी नेसेसिटी आती है, तो डेफिनेटली निकालिए। और दूसरी चीज, अगर आप जो आपका करंट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है उसमें आप और अपनी यू नो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं और वो अमाउंट आपकी हेल्प करेगा, तो बिल्कुल उसको आप निकालिए।
ऑल राइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय प्रताप कॉलिंग अस ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। जी प्रताप जी, सवाल पूछिए।
नमस्ते मैडम।
नमस्कार।
एक्सिस बैंक का ब्लू चिप फंड है 3-4 साल से मेरी डॉक्टर का, तो कंटिन्यू करे क्या चेंज कर डाले? और सेकेंड क्वेश्चन है कि मेरा ग्रैंडसन है 8 साल का, और उनका हम पीपीएफ अकाउंट उनके बर्थ से चालू किया है, तो अभी जो गोल्ड बॉन्ड आने वाले हैं तो उनके पास कुछ अलग हमारे पास फंड आने वाला है 1-2 लाख रुपए का, तो पीपीएफ अकाउंट में डाले कि ये सॉवरिंग गोल्ड बॉन्ड में जाना चाहिए? थैंक यू मैडम।
हाँ जी, तो जो आपने पहला फंड बोला एक्सिस ब्लू चिप फंड, वो फंड काफी लंबे समय के पीरियड में देखा जाए तो बहुत अच्छी प्रदर्शन रही है, उसका एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंट है, काफी हाई इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी है उसमें जो हम उसके एओएम साइड से देख सकते हैं, और बट उसकी हाल फिलहाल में जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी लैग कर रही है, बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ 3 साल से लैग कर रही है। तो आई वुड से एक तो अगर आप इसमें लंबे समय से बने हुए आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्टॉक ले सकते हैं कि अगर दूसरे ब्लू चिप जैसे एसबीआई ब्लू चिप एक हो गया या फिर मिराय एसेट लार्ज कैप हो गया, अगर उनका केस ज्यादा स्ट्रांग बनता है, और एक और नाम मैं आपको बता सकती हूँ आईसीआईसीआई ब्लू चिप, उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये फंड थोड़े लंबे समय के लिए मतलब इसने इन्वेस्टर्स को उतना नहीं दे पाया है ये जितना ये हिस्ट्री में दे पाया था। तो आप ये कुछ तीन और फंड्स देख सकते हैं, जहां आपने जो मेंशन करा अबाउट डिसाइडिंग बिटवीन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड जो एसजीवीज आ रहे हैं, सो आई वुड से ये दोनों ना एक्चुअली आपको बिल्कुल ही अलग टाइप के एक्सपोजर्स देते हैं। जहां पर पीपीएफ आपको फिक्स्ड इनकम का एक्सपोजर दे देता है, वहां पे जो एसजीवीज होते हैं वो आपको गोल्ड एसेट क्लास का एक्सपोजर देते हैं। आई वुड से आप इनमें एंड और मतलब ये ऐसे डिसाइड ना करके आप पीपीएफ में तो बने रहिए, क्योंकि आप लंबे समय के लिए उनके लिए कर रहे हैं। गोल्ड में अगर आप एक्सपोजर चाहते हैं और आपके पास सरप्लस बचता है वो आप उसमें डेफिनेटली कर सकते हैं। बट इसमें मैं आपको अगर चूज करना हो तो आपको मैं बोलूंगी आप पीपीएफ के साथ ही कंटिन्यू करें।
जी अगले कॉलर हैं जबलपुर से धन सिंह, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जबलपुर से धन सिंह जी हमारे साथ हैं, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए लालिमा अगली खबर पे नजर डालते हैं तब तक।
यस एब्सोल्युटली, लेट्स मूव ऑन विद गोल्ड। यू जस्ट टॉक्ड अबाउट द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्नेहा। Global gold prices registered their first weekly gain in four weeks on slowing inflation in the US, which has renewed hopes of a rate cut later this year by the Federal Reserve, while a stock sell-off across Europe also lent some support to prices. Gold rose nearly 2% during the week to end at $2,349 per ounce. Silver finished the week at $29.47 per ounce after hitting its lowest level in nearly 1 month on Thursday. A stronger than expected jobs report doused early rate cut hopes. Lower rates tend to boost appeal for non-yielding bullion by making it a more attractive investment compared with other assets such as treasury bonds. More on this later. For the moment, let's get down to talking to our caller from Ghaziabad, Gaurav. Hello.
Good evening, Market Matra team. Good evening, Sneha madam.
गुड इवनिंग जी। जी गौरव जी, सवाल पूछिए।
मैडम अभी मार्केट का सिनारियो और पूरा बदल चुका है, 21,000 करोड़ एवरी मंथ एसआईपी आ रहे हैं, तो ये किस इक्विटी में जा रहे हैं, स्मॉल कैप में जा रहे हैं या फ्लेक्सी कैप में जा रहे हैं? क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो ये होता है कि वी वॉन्ट टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न, तो वॉट डू थिंक इन नियर फ्यूचर विच फंड और कंसिडरिंग द मार्केट विच फंड विल गिव हाइएस्ट रिटर्न, मल्टी कैप, स्मॉल कैप? बिकॉज स्मॉल कैप ने बहुत अच्छे दिए, स्मॉल कैप शुड बी स्मॉल कैप टी गिविंग हाईएस्ट रिटर्न। और दूसरा सवाल है मैडम कि पिछले 10-15 सालों से जो इन्वेस्टेड हैं उनको अब डीकेवाईसी करवा रहे हैं, तो कैसे करें? ऑनलाइन होता नहीं है, तो शुड बी गो टू द ऑफिस थ्रू कैम्प्स? क्या करें, केवाईसी करवा रहे हैं, कहीं कुछ बोलते हैं आधा आपका केवाईसी है आधा नहीं है, ये सब इसके बारे में कुछ थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। थैंक यू।
राइट, सो जो आपका पहला सवाल था कि एसआईपी इन्फ्लोज आए जा रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं, कौन से फंड में जा रहे हैं, कौन सा फंड, कौन सा मार्केट सेगमेंट अच्छा करेगा बुरा करेगा, तो ये आगे क्या होने वाला है ये कोई बता नहीं सकता है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि स्मॉल कैप के रिटर्न हमने देखे हैं कि बहुत अच्छे गए हैं, बट आप देखेंगे कि आज के समय में बैठकर आप कह पा रहे हैं कि वो बहुत अच्छे थे या अभी हैं, बट वो पास्ट की एक परफॉर्मेंस हो गई जिसपे आप आज रिफ्लेक्ट करके एक इंटरप्रिटेशन दे पा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही मार्केट के ये अप्स एंड डाउन्स का पता चलता है कि जब ये हो जाता है उसके बाद हमें पता चलता है। तो आई वुड से कि कौन सी कैटेगरी अच्छा करेगी ना करेगी नहीं करेगी, जिसमें फ्लोज जा रहे हैं नहीं जा रहे, इन चीजों से आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क ड्राइव नहीं होना चाहिए। ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि मान लीजिए आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप लार्ज कैप कंपनीज का एक्सपोजर ज्यादा चाहेंगे, तो आप लार्ज कैप सेगमेंट वाले फंड ज्यादा देखना चाहेंगे, बट अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा अग्रेसिव है तो आप कुछ 15-20% अपने मिड स्मॉल कैप जैसे फंड्स में रख पाएंगे, क्योंकि जहां पे उनका रिटर्न आउटकम बहुत ज्यादा हो सकता है वहां पे ये भी देखा गया है कि उनकी वॉलेटिलिटी आपको 0 to -negative रिटर्न्स भी दे सकती है एक समय में। तो आप अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से थोड़ी जानिए और समझिए कि आपको किस पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जहां पे सारा पैसा जा रहा है वहां पे तो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस चेज करना चाह रहे हैं, ऐसा एक कहने के तरीके से मैं कह सकती हूं, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू यू नो अप्रोच थिंग्स. मार्केट का मोमेंटम कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जब तक आपको समझ आ रहा है ना, तब तक आप आराम से उस मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को नेविगेट कर पाएंगे.
जी, अगले कॉलर है फरीदाबाद से विशाल. स्वागत है आपका विशाल, सवाल पूछे.
जी सर, गुड इवनिंग, कैसे हो?
गुड इवनिंग जी, सवाल पूछे.
सर मेरा सवाल ये है कि एक तो मेरे दो सवाल है सर. एक सवाल मेरा ये है कि जैसे मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ ग्रो के थ्रू करता हूँ SIP में, तो उसमें जैसे अगर मैं 1000 रूपये देता हूँ तो मेरे उसमें जो 7 पैसे कट के जाते हैं, तो क्या वो सब में होता है या फिर मेरे साथ ही हो रहा है? अगर मेरे साथ हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे वो 7 पैसे नहीं कटे? दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि मुझे जैसे मेरी इन्वेस्टमेंट्स का अगर जैसे उसमें मुझे जो दिखाते हैं वो मुझे टोटल रिटर्न दिखाते हैं कि अभी तक जो मैंने इन्वेस्ट किया है और जितना मेरा आया है उसका रिटर्न इतना है, इतने परसेंट है, पर मुझे अगर एनुअलाइज करना हो मेरी SIP का रिटर्न तो उसके लिए मुझे क्या देखना होगा? कौन सा उसका एक कोई फैक्टर होता है जो मुझे जिस पे ध्यान देना चाहिए? थैंक यू.
तो जो आप कह रहे हैं कि आपका थोड़ा सा पैसा आपको कट के दिखता है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि ग्रो का अंडरलाइंग क्या एक वो चीज अपनाते हैं जिस वजह से ये हो रहा होगा, बट मेरी समझ के अनुसार थोड़े टाइम पहले एक स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट कटना शुरू हुआ था. मतलब हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स की जो भी हम अमाउंट डालते हैं, तो हो सकता है कि वो वाला परसेंटेज आपका कट रहा हो और इसलिए आपको वही इन्वेस्टेड अमाउंट दिखता है इन द फंड दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन. जो दूसरी चीज आपने बोली कि वो आपको टोटल रिटर्न दिखाते हैं, तो मुझे मतलब क्लैरिटी से समझ नहीं आया कि आप एग्जैक्टली टोटल रिटर्न किसे कह रहे हैं, बट अगर आप अपना यू नो जो आप कह रहे हैं एनुअलाइज्ड ग्रोथ रिटर्न देखना चाहते हैं, तो आपके पास अपना अमाउंट जितना इन्वेस्ट किया गया होता है वो होता है, और आपकी वो वैल्यू आज कितनी हो गई है वो होती है, और कितना समय हो चुका है वो भी होता है. तो CAGR एक रिटर्न वैल्यू होती है जो आप मतलब ये तीन इनपुट्स डालकर आप निकाल सकते हैं. ये आप थोड़ा सा गूगल भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या फॉर्मूला होता है इसका, बट ये तीन वैल्यूज आपके पास होती हैं और आप ये यूज करके निकाल सकते हैं.
ये कुछ एप्स पे ये ऑलरेडी वो शो हो रहा होता है सामने, और शायद ये जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नहीं हो रहा होगा.
All right, these days we hear a lot of news about cyber crimes and related to money. We have some report on that. The Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC as we call it in short, has started a multimodal awareness campaign to counter the rising financial fraud incidents in the country. Under this campaign, the general public is being made aware to protect themselves from these financial fraud traps through several platforms including newspapers, mobile messages, emails and social media. CBIC said that various incidents have come to light where fraudulent persons posing as Indian customs officers cheat public of their money across the country. These frauds are primarily conducted using digital means like phone calls or SMS and are focused on extracting money through the purported fear of immediate penal action. CBIC urged the public to discern the modus operandi of fraudsters, protect their information, verify antecedents of the caller and report such acts by staying alert.
जल्दी से एक आखिरी कॉल लेते हैं. आरके सिंह है दिल्ली से, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
हेलो, नमस्कार.
जी नमस्कार.
हाँ जी सर, मैं ये म्यूचुअल फंड में पूछना चाहता
हूँ जी
कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितना हम अमाउंट दे सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और कितने टाइम के बाद हम बढ़ा सकते हैं या फिर बढ़ा के फिर हम घटा सकते हैं, ऐसा कोई नियम है? क्योंकि हमें
जी
जी तो जहां तक मिनिमम आप कितना डाल सकते हैं, बहुत सारे इक्विटी फंड्स हैं जो आपको 500-1000 रूपये तक की मिनिमम राशि आपको इन्वेस्ट करनी होती है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. आज के टाइम पे ऐसे भी हैं जो 100 और 10 रूपये से आपको स्टार्ट करवा देते हैं.
All right. वक्त इतना ही था आज हमारे पास मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू स्नेहा सूरी. एंड नाउ द हेडलाइंस. फॉरेन इन्वेस्टर्स पंप इन नियरली 12,000 crore rupees दिस वीक. ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस रजिस्टर्ड द फर्स्ट वीकली गेन इन 4 वीक्स. एंड CBIC starts awareness campaign to counter rising financial frauds. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Subodh Mishra, signing off. Namaskar. Mm-hmm.
Market Mantra.